ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सौवसाऊं प्रणमीय शिरसानेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयम् पयडिसमुक्कीर्तनम् ओच्छम् परम भये सवखण्डिके कर्मकाण्ड समुदाय सहज अखण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरण मङ्गलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि छंद दिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ है और उस पर पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी है कर्मकांड की, और जिसके आधार से यहाँ जो हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं उसमें हम 85 पृष्ठ पर आगे 85 अब नया विषय शुरू होगा निक्षेपों का। उसके पहले आपका क्या प्रश्न है सुशीला? हाँ हाँ, ये विपाक जो विपाककृत जो भेद है, देखिए कर्मों के भेद हम अलग अलग अपेक्षाओं से करते हैं। मूल में हमने देखे सामान्य से कर्म एक है और उसके ज्ञानावरणादि 8 भेद होते हैं जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, और हर एक के जो उत्तर भेद कहते हैं उसको उत्तर प्रकृति कहते हैं। दूसरी अपेक्षा से भेद करते हैं तो घाती कर्म और अघाती कर्म, 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म, इसके नाम सबको पता है। घाती कर्मों के भी भेद देखे हमने तो सर्वघाती और देशघाती ऐसे प्रकृतियों के भेद हो गए, और अघाती कर्मों में तो पुण्य और पाप प्रकृति ऐसा भेद है। घाती कर्म सभी पाप रूप है, अघाती में कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है कुछ पाप रूप है, उसके भी बात हमने देखी है। अब यहाँ अलग पद्धति से उनका विभाजन करने, ये जो कर्मों के उदय का जो फल है जिसको विपाक कहते हैं, फल देने की शक्ति को रस कहेंगे, अनुभाग कहेंगे, परंतु वो रस या उसका अनुभाग यानी उसका फल कब मिलेगा, उसका निमित्त कब बनेगा, तो कहते जब वो उदय में आते हैं तब। बंधते समय उसका बंध हुआ है फिर यथा योग्य काल तक सत्ता में पड़ा रहता है तब उस कर्म का कोई फल जीव को नहीं मिलता। कितने भी कर्म जिसको हम कहेंगे पुण्य प्रकृतियां हो या पाप प्रकृतियां हो उसका कोई फल नहीं है। फल कब होता है? जिस समय उदय में आता है तो उस समय उसका फल मिलता है, उसका अर्थ उसका जो कोई निमित्त बनता है। तो ये विपाक कहते हैं, कर्म के फल को विपाक कहते हैं। तो विपाक का फल जो मिल रहा है, विपाक जो मिल रहा है वो किसमें किसमें मिल रहा है? कुछ तो पुद्गल में मिल रहा है, कुछ जीव के लिए जीव में मिलता है, कुछ क्षेत्र में और कुछ भव में। तो इस अपेक्षा से ये जो प्रकृतियां हैं उसमें पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, ऐसे 4 भेद किए। डायरेक्ट हम टेबल देखेंगे 84 पृष्ठ पर, वहाँ पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कही है। हमने जिस क्रम से याद किए थे नाम कर्म, कैसे किए थे, गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्कार, सहनन, अंगोपांग वगैरह वगैरह, तो शरीर नाम कर्म से लेकर आगे की प्रकृतियां कहाँ तक लेना है? तो स्पर्श तक, क्योंकि हमने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इस ऑर्डर से याद किया। हाँ, 50 आपके पास हिसाब है तो ये 50 प्रकृतियां तो ये हो गई। उसके बाद निर्माण आतप उद्योग स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधारण अगुरु लघु उपघात और परघात ये पुद्गल विपाकी है। तो कुल इनकी टोटल हो गई 62। ये 62 प्रकृतियों का फल पुद्गल में यानी शरीर में या अन्य जो कुछ बातें हैं उसमें मिल जाए। भव विपाकी जो है वो चार हो, ये जो आयु कर्म है वो भव विपाकी है, विशिष्ट पर्याय में उसका उदय होता है। मनुष्य भव तिर्यंच भव कहेंगे तो वहाँ मनुष्य आयु तिर्यंच आयु देवायु का उदय रहता है। पहले ही समय से विग्रह गति से ही उस आयु का उदय पाया जाता है। जब तक आयु का उदय है तब तक वो उसकी पर्याय चल रही है। आयु का उदय समाप्त होता है उसके परमाणु फिर जाते हैं सभी, फिर नए आयु का उदय शुरू हो जाता है। तो जीव हम कहेंगे उसकी दूसरी पर्याय शुरू हो गई। क्षेत्र विपाकी विशिष्ट क्षेत्र में कौन से, जब एक भव एक पर्याय छोड़कर जीव अन्य पर्याय में चला जाता है जन्म लेने के लिए, तो रास्ते में जिसको हम कहेंगे विग्रह गति। विग्रह गति में कौन सी वाली, वो मोड़ वाली गति, मोड़ के पहले पहले, क्योंकि अंतिम मोड़ के पश्चात जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँचते ही संस्थान नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है और जीव का वो नया आकार शुरू होता है। दूसरी पर्याय का आकार कब होगा, जहाँ शरीर के परमाणु ग्रहण करना शुरू करता है उस समय। विग्रह गति में उससे पहले का आकार कायम रहता है, वो उस गत्यानुपूर्वी का उदय का कार्य है। यानी गत्यानुपूर्वी का उदय मात्र उस विग्रह गति में ही होता है मूड़ वाली में। तो उस क्षेत्र में यानी जाते समय ट्रांजिट पीरियड हम कहेंगे उसका, उसी क्षेत्र में उसका उदय है, अन्यत्र उसका उदय नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे क्षेत्र विपाक। नहीं, शरीर नाम कर्म का उदय कब होता है, वहां जाने पर। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय वो कब शुरू होता है, वहां जाने पहुंचने पर। यानी जहां जन्म लेना है वहां पहुंचने पर शरीर नाम कर्म कहां पर्याप्ति शुरू होने का पहला समय, तभी संस्थान नाम कर्म का भी उदय शुरू होता है। जब हम नाम कर्म के प्रकरण में आगे चलकर जाएंगे कौन से कर्मों का उदय कब होता है, तब ये बातें और आपको यानी ख्याल में आएगी या स्पष्टता और ख्याल में आ जाएगी। तीन समय ही हो सकते हैं अधिक से अधिक, और वो तीन मोड भी एकेंद्रियों के होते हैं, पंचेंद्रियों के तो होते नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय मरकर भी वो तृष्णादि में जन्मेंगे। अभी हमने वो विग्रह गति के बारे में पहले बहुत बार देखा है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो क्षेत्र विपाकी हो गए, अब जीव विपाकी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, यानी ये सभी प्रकृतियों में जीव विपाकी अलग निकालें। संवेदनीय के दोनों, साता और असाता, गोत्र की दोनों, अब ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय, यानी ये जो घाती कर्म सभी 47, नाम कर्म की 27, क्योंकि नाम कर्म की बहुत सारी तो पुद्गल विपाकी देखी हमने 62 और यहाँ नाम कर्म की 27 होती है। कौन कौन सी है, तीर्थंकर, देखो नाम कर्म की टोटल कितनी है 93, यहाँ हो गई 27 और वहाँ हो गई 62, कितनी हो गई अभी, कितनी हुई 89 और अनुपूर्वी 4, 93 हो गई बराबर। तो यहाँ 27 कौन कौन सी है, तो तीर्थंकर नाम कर्म, फिर उच्छ्वास, क्योंकि अगरु लघु उपघात परघात हमने वहां लिए थे, एक उच्छ्वास छोड़ा था वो यहाँ लिया, बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त, वहां तो कौन से लिए थे हमने, प्रत्येक और साधारण वहां लिया था, प्रत्येक साधारण लिया था, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक में से। हाँ एक वहां जो पुस्तक में जो लिखा था वैसे उस क्रम से लिया, सुस्वर दुस्वर आदे यदादे यशस कीर्ति यशस कीर्ति त्रसस्थावर, वैसे त्रसस्थावर बादल सूक्ष्म में एक साथ ले सकते थे तो याद रखने में आसान होगा। प्रशस्त अप्रशस्त विहार गति, सुभग दुर्भग गति 4 और जाति 5, ये सारे ही जीव विपाकी हैं। ये तो हमने कल बात देखी थी, समझ में आई बात अभी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने तीन प्रकार के श्रोता भी देखे थे, जो कुछ जानते हैं सुनते हैं मगर कुछ है ऐसा करके छोड़ देते हैं, उसका विचार ही नहीं करते, उसको हम कहेंगे अनध्यवसाय पाया जाता है, यानी जाना परंतु क्या जाना, उसका क्या अर्थ है, कुछ कुछ नहीं उसके बारे में। दूसरा ऐसा श्रोता है कि सुनता तो है परंतु वो तो उसमें संशय रहता है, और संशय नहीं है, बिल्कुल पक्का हम निर्णय कर लिया, कैसा विपरीत। तो इस तरह से ये अलग अलग श्रोता है। हमें ऐसा भी हमने देखा था कि जो मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान को किस तरह से समझाया जाता है, जो अनध्यवसाय है, संशय है, विपरीत है, ऐसे जो ज्ञान है वो उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। अब इसलिए कहते हैं वो यथार्थ का निवारण करना है, रूल आउट करना, जो ठीक नहीं है, जो सच्चा नहीं है उसको रूल आउट करना और सच्चे का ज्ञान कराना। तो कहते हैं अयथार्थ का निवारण करना और यथार्थ की प्ररूपणा करना। यानी यहाँ अभी निक्षेप समझाने जा रहे हैं, निक्षेप नाम का जो विषय लेंगे, तो निक्षेप क्यों समझना आवश्यक है। यानी कोई भी चीज़, हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो उस पर निक्षेप लगाते हैं। जानने का कार्य तो ज्ञान करता है, पर जो जान, हम जिस वस्तु को जान रहे हैं उसमें हम अलग अलग निक्षेप के द्वारा उसको जानेंगे। निक्षेप वस्तु में रखे जाते हैं और जानने का कार्य तो ज्ञान में होता है। तो ये निक्षेप क्यों समझना आवश्यक है, अभी हम कर्मों पर भी निक्षेप लगाएंगे। तो कहते हैं अयथार्थ का निवारण करना है, यथार्थ का निरूपण करना है, कथन करना है, संशय का नाश करने के लिए, और तत्व का उदाहरण, उदाहरण यानी समझना, जानना, ग्रहण करना, उदाहरण करने के लिए। ये जो कर्मों के अभी हमने सामान्यादि भेद और प्रभेद कहे थे, अभी तक हमने जो जान लिए थे उस पर हम नाम वगैरह जो निक्षेप है, नाम स्थापना द्रव्य भाव, वो निक्षेपों को यहाँ कथन करके बताएंगे। यहाँ ऊपर लिखते हैं एक जो नीचे श्लोक है ना, उसके ऊपर क्या लिखा है, यदि कथन न करेंगे तो उनका मन संशयादि रहित नहीं होगा, इसलिए कथन करते, इसलिए इतने विस्तार से जानना आवश्यक है। अब प्रथम ही नामादि निक्षेपों का स्वरूप कहते हैं। नामादि कौन कौन से, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, कौन से तेजस,
नाम स्थापना द्रव्य और भाव।
हाँ ऊपर लिखे देखो, नीचे से दूसरी लाइन में लिखा है, दूसरी तीसरी लाइन में, उनका नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपों द्वारा कथन करते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर,
ये यहाँ कोटेशन दिया हुआ है,
तीन यहाँ श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। अतद्गुणेषु भावेषु व्यवहार प्रसिद्धये यत् संज्ञा कर्म तन्नाम नरेच्छावशवर्तनात् साकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम् सोऽयम् इत्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते आगामी गुणयोग्योऽर्थो द्रव्यं न्यायस्य गोचर तत्कालपर्ययाक्रान्तं वस्तुभावोऽभिधीयते। देखो क्या कहा पहले श्लोक में, क्या कहा, अतद्गुणेषु भावेषु व्यवहार प्रसिद्धे, यानी व्यवहार के लिए जिसमें जो गुण नहीं भी हो तो भी उसको कोई भी नाम रख देना, यह है नाम, नाम निक्षेप, नाम स्थापना, नाम निक्षेप। जैसे हमने अपने बच्चे का नाम सर्वज्ञ रख दिया, महावीर रख दिया, कुछ भी, आपने क्या रखा, मोक्षा, तो मोक्ष पर्याय सहित नहीं है, फिर भी ये यानी व्यवहार चलाने के लिए, क्योंकि हम उसको नाम लेके बुलाएंगे, उसके साथ बात करेंगे, दूसरे व्यक्ति के साथ बताते हैं, उसको रेफरेंस हमको लेना है तो हम थोड़ा ही उसको कहेंगे, हम कहेंगे ना मोक्षा को बुलाओ, तो वहाँ कोई भी नाम रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वैसे गुण वैसी पर्याय उसमें प्रकट हो, उसको कहेंगे नाम निक्षेप। नाम में तो इतना ही, यहाँ कहना यत् अतद्गुणेषु भावेषु, अतद्गुण वो गुण उसमें प्रकट नहीं है, फिर भी उस गुण के द्वारा हम नाम रख सकते हैं। यत् संज्ञा कर्म, जो संज्ञा रखी जाती है, नाम रखा जाता है, उसको नाम कहते हैं, उसको कहते हैं नरेच्छा वशवर्तना, नरेच्छा ने वो अपने इच्छा से हम कोई भी नाम रख सकते हैं। दूसरी बात, साकारे व निराकारे, जो सदाकार या और तदाकार, यानी जो जिस एक कोई वस्तु है उसमें हमने दूसरे वस्तु की स्थापना करनी है। स्थापना करनी यानी उसको उस वस्तु से हम पुकारेंगे, उसका नाम रखेंगे, यानी उसको हम उस वस्तु जैसा व्यवहार उपचार इसमें करेंगे। सबको मालूम है कि मंदिर में हम जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हम कहते हैं हमारे महावीर भगवान है। तो हमने क्या किया, वहाँ महावीर मनुष्याकार है, वहाँ मनुष्य के आकार की मूर्ति जो बनाई है और उसमें ये महावीर भगवान है ऐसे हमने स्थापना की, उसको कहेंगे स्थापना निक्षेप। फिर उस मूर्ति के साथ हम साक्षात भगवान महावीर विराजमान है इस तरह से उनकी पूजा अर्चा वगैरह करते, उसको कहेंगे तदाकार स्थापना। वह तदाकार यहाँ उसके लिए निराकार लिखा है, तो अतदाकार यानी जो उसका आकार नहीं है उसको उस रूप कह देना। जैसे आप शतरंज देखे, आपने खेली हो,
चेस
चेस देखा तो होगा, तो उसमें हाथी होता है, ऊंट होता है, तो हाथी के आकार का है वो, फिर भी उसका पर्टिकुलर जो है उसमें हमने क्या, ये हाथी हम कह देते, ये राजा है, ये वजीर है, ये घोड़ा है, ये क्या है, ऊंट है,
वो मेट को चेकमेट देते हैं ना,
हाँ
वैसा हो जाता है।
तो उसको क्या कहेंगे, अतदाकार स्थापना। पहले के जमाने में कोई पूजा है और कोई नहीं आ सकते कोई, या किसी की पत्नी चली गई है मायके रूट करने, अभी हो सकता है डिलीवरी के गई हो कुछ भी, और कोई पूजा विधान है तो वहाँ वो सुपारी रखने का प्रकार, और वो तो हस्बैंड पति गया होगा तो तलवार
नहीं
तो लैपटॉप उसका
वो भी रिलायंस का
आजकल क्या हो गया, वो दूल्हा अमेरिका में, दुल्हन यहाँ पर, और वो इंटरनेट पर कुछ मैरिज भी वो सारे विधि हो जाते क्यों, हाँ ये मैरिज। अच्छा तो उसमें वो सब क्या हुआ, उसकी जो फोटो आ रही है उसको स्थापना तो कर दी, वो साक्षात है इस तरह, उसके ऊपर विधि भी बोलेंगे, सब करेंगे, मंत्र बोलेंगे देते हैं,
वो वहाँ पे लेता है,
हाँ अच्छा वहाँ पर लेता है, अच्छा है। तो यहाँ हाँ, सो अयम इति अवधाने न स्थापना सा निगदते, उसको यह चीज है ऐसा हम जो मान लेते हैं, कहते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसको हम कहेंगे स्थापना निक्षेप। आगामी गुण योग्य अर्थो द्रव्यम न्यायस्य गोचरा, यानी द्रव्य तो वही का वही है परंतु जो आगामी पर्याय का अभी उपचार करते हैं हम, हमारे भविष्यकालीन तीर्थंकर कौन है, श्रेणिक राजा, वो श्रेणिक राजा हमारे तीर्थंकर है क्या, श्रेणिक राजा कब थे, महावीर भगवान के काल में थे, अब वो तो पहले नरक के नारकी है, और जब वो हमारे पहले तीर्थंकर हो गए तो हम उनका नाम होगा महापद्म, महापद्म, तो उसका उपचार द्रव्य तो वही का वही है, जीव वही का वही है, उस पर किसी पूर्व पर्याय का भविष्यकालीन पर्याय में या भविष्य पर्याय का भी वर्तमान में ये जो उपचार होता है उसको कहेंगे द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप में जिस काल में वो उस रूप परिणमित होती है उस काल में उसको भाव निक्षेप कहेंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे टीका में, जिसमें तदगुण नहीं है ऐसा जो पदार्थ, ये तदगुण की बात बताए ना, हमें नाम रखना है तो जरूरी नहीं जो नाम है वैसा गुण उस व्यक्ति में हो या उस पदार्थ में हो, जिसमें तदगुण नहीं है ऐसा जो पदार्थ उसमें व्यवहार की सिद्धि के लिए, ये बहुत महत्व की बात है, ये सारे निक्षेप जो होते हैं व्यवहार की सिद्धि के लिए हो जाते हैं, व्यवहार की सिद्धि के लिए मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार संज्ञा दे नाम रखे वहां नाम निक्षेप है। ये तो हम अपना बालक का कोई नाम रखते हैं, अभी हमने उदाहरण सबके देख लिए, पुनश्च तदाकार यानी उसके आकार का, तथा अतदाकार यानी उसके आकार का नहीं है, ऐसे काष्ठादि में, काष्ठादि में का अर्थ क्या है नितिन भाई, काष्ठ ने क्या, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, क्योंकि हमने लकड़ी की कोई डॉल बनाई उसको हम ये राजा है, ये शिवाजी राजा जिससे बना दिया, लकड़ी में बना सकते हैं, मिट्टी में बना सकते हैं, कपड़े की डॉल बना के उसमें बना सकते हैं, किसी में भी चित्र भी बना सकते हैं, तो ये हमारे राजा है, ऐसा कहते ना, वो राजा थोड़े राजा का चित्र है, फिर भी उसमें क्या कहते, ये हमारे शिवाजी महाराज। तो कहते हैं कि काष्ठादि में यह विवक्षित पदार्थ है, इस तरह अपने परिणामों द्वारा स्थापना करें। हम अपने परिणामों द्वारा वैसी स्थापना करते हैं, वहां स्थापना निक्षेप है। पुनश्च जिसमें आगामी काल में गुण प्रकट होगा, देखो हमेशा वो तो गुण का अर्थ, वो तो त्रिकाली जो द्रव्य में रहने वाला उसकी बात नहीं है, क्योंकि गुण तो अनादि से अनंत काल तक रहते हैं, नित्य तादात में संबंध है द्रव्य के। तो गुण प्रकट होना का अर्थ क्या है? पर्याय होगी, उसी द्रव्य में वो पर्याय होने वाली है। ऐसे पदार्थ द्रव्य निक्षेप के गोचर, यानी उस पदार्थ को उस भविष्यकालीन पर्याय से हम अभी कह सकते हैं। जैसे आपने अभी अभी ये राइस यानी चावल धो रही है, तो क्या बना रहे? तो भात बने, अभी भात तो बनेगा जब जाके, अभी तो हम डब्बे में से निकाल रहे हैं, अभी धो रहे हैं ना, उसको कहेंगे द्रव्य निक्षेप। पुनश्च जिसमें वर्तमान काल में तद्गुण रूप पर्याय पाई जाती है, उसको वस्तु भाव कहते हैं, यह भाव निक्षेप है। वस्तु भाव कहते हैं ना, उस वस्तु का वो भाव है, यानी वो द्रव्य निक्षेप। तो पहले अन्य पर्याय का अन्य पर्याय में उपचार किया, द्रव्य वही का वही था, यहाँ जो पर्याय चल रही है उसी से, उसी के द्वारा उसके व्यवहार चलता है, उसको हम भाव निक्षेप कहते
हैं। नहीं समझा? एक व्यक्ति नए गांव में गया, वहाँ मंदिर में गया, तो वहाँ का राजा पूजा कर रहा था, तो उसने बोला ए पुजारी, तो राजा ने उसको पकड़ा, थोड़ा सा दरबार में ले गया, तो तुम, मैं राजा हूँ, तुम मेरे को पुजारी कैसा है? तो उसने कहा देखो साहब, ये भाव निक्षेप से तो आप पुजारी ही हो। वो भी जैनी था तो समझ गया, तो उसको छोड़ दिया। यानी जिस वक्त जिस परिणाम से या जिस क्रिया कर रहे हैं उसको उस रूप से कहना, ये कोई गलत नहीं है, वो भाव निक्षेप से हो गया।
अभी यहाँ उदाहरण पुस्तक में भी लिखेंगे जो हमने देख लिए, यहाँ उदाहरण बताते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी का स्वामी राजा विवक्षित है, राजा पर ये सभी निक्षेप घटा रहे हैं, राजा शब्द पर चारों निक्षेप बताते हैं। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि क्या कहना चाहते ख्याल में नहीं आती है बात हमें। मनुष्यों ने अपनी इच्छानुसार व्यवहार की सिद्धि के लिए किसी पुरुष का नाम राजा रखा, उसको राजा कहना नाम निक्षेप है। हमारे बच्चों का नाम तो राजा रख सकते हैं ना, बहुत सारे हैं राजा, क्यों? पुनश्च काष्ठ चित्रादि के, यानी लकड़ी हो या कोई मिट्टी हो या कोई अन्य धातु हो, किसी भी चीज में वो मूर्ति बनाना है, उसका आकार करना, तो काष्ठ चित्रादि के तदाकार या अतदाकार में यह राजा है ऐसा स्थापित करके, यानी जरूरी नहीं उसके आकार का हो, बस हमने ऐसा एक ढेर रख दिया, ये राजा है कह दिया, तो वो होगा हमारे स्थापना निश्चय। ऐसा स्थापित करके काष्ठ चित्र आदि के बने आकार को राजा कहना स्थापना निश्चित है। यदि राजा जैसा आकार किया तो वो हम तदाकार स्थापना कहेंगे। कोई भी हमने ऐसा मिट्टी का ढेर रख दिया, ये राजा है, ये हमारी प्रजा, ये कुछ ऐसा कह दिया, तो वो हो गया अतदाकार स्थापना। वहाँ तदाकार स्थापना राजा के समान आकार हो वहाँ जानना, और अतदाकार स्थापना जहाँ राजा जैसा आकार न हो और राजा को स्थापित करे वहाँ जानना। अभी इसका उदाहरण मेरी भाषा में लिखा है, जैसे शतरंज में राजा वजीर हाथी आदि की अतदाकार स्थापना है। पुनश्च जो आगामी काल में राजा होगा उसे राजा कहते हैं, वहां द्रव्य निक्षेप है, और जो वर्तमान में पृथ्वी का स्वामी है उसे राजा कहते हैं, वहां भाव निक्षेप है। देखो जो कोई राजपुत्र है, युवराज है, उसको भी नौकर क्या कहेंगे, राजा साहब करके पुकारेंगे, तो वो भविष्य में होने वाला है, परंतु अभी से उनको राजा कहना ये क्या होगा, द्रव्य निक्षेप। जैसे हमने जब मेडिकल में प्रवेश लिया, अभी फर्स्ट ईयर में है, त तभी हमारे घर के नौकर हमको डॉक्टर डॉक्टर कह के पुलाने करने आए।
मुफ्त में दवा देंगे इसको।
हाँ अभी तीर्थंकर का जन्म हुआ कहेंगे ना, कहेंगे हम वो द्रव्य निक्षेप से सही है। जैसे अभी सैनिक राजा को हम तीर्थंकर कह रहे तो बालक को कहने में क्या हर्जा है, वो तो उसी भाव में जाने वाला है। हाँ फिर भी हमें ये समझना आवश्यक है कि वो तो तीर्थंकर जब जाके तेरहवें गुणस्थान में होगा तब बनेगा, तब उसको हम भाव निक्षेप से तीर्थंकर कहेंगे। पर जन्मते समय उसको तीर्थंकर कहना एकदम 100% ये गलत है ऐसा नहीं कह सकते, वो हम द्रव्य निक्षेप से कह सकते उसको। यानी कथन में कोई दोष नहीं है, परंतु कथन किया तो भी समझना हमारी जवाबदारी।
जैसे बच्चों को सिखाते आदिनाथ तीर्थंकर ने कितनी शादी करी थी, तो वो बोलेंगे दो, तो ये गलत फहमी न रहे इसलिए अभी बताते ये है कि आदिनाथ राजा ने दो शादी की थी, तीर्थंकर ने नहीं।
यानी तीर्थंकर जन्मते नहीं, तीर्थंकर शादी नहीं करते, ये जो बातें बताना चाहते, क्योंकि बच्चों को ये बात आवश्यक है कि यथार्थ क्या है वो समझना जरूरी है। और निक्षेप के द्वारा ये व्यवहार की रूढ़िगत या सिद्धि के लिए व्यवहार चलाने के लिए कहना कोई अलग बात है, कह दिया तो समझना अपनी जिम्मेदारी। इस तरह जो पदार्थ विवक्षित हो, जिस किसी की बात हमें समझनी है, उस पदार्थ पर ये सब निक्षेप लगेगा। उसके नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप जानना, यहाँ कर्म विवक्षित है, हमको ज्ञान समझना है, श्रुत ज्ञान पर लगाओ, सभी हम निक्षेप लगाएंगे। हरेक कोई भी चीज हो, समय दर्शन पर लगाओ, सामायिक नाम है उस पर लगाओ, ये सभी में ये निक्षेप लगते हैं। हमें जो कोई विषय समझना है उस बारे में ये सभी निक्षेप लगाकर उसको समझा जाता है। हमने धौला में जब पढ़ा था, हर एक में वो कोई भी नया विषय तो शुरुआत में पहले वहाँ तो छः छः निक्षेप लगा देते। कौन से छः? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये छः निक्षेप लगाते थे। अभी हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है यहाँ, ये चार निक्षेप तो बेसिक है और उतने हमारे लिए कार्यकारी। तो यहाँ कर्म विवक्षित है, कर्म विवक्षित है ना, हम कर्म का अभ्यास करते हैं, कर्मों के हमने अभी अभी भेद प्रभेद देखे हैं, उस पर ये निक्षेप लगाएंगे। इसलिए इसके चार निक्षेपों का कथन 34 गाथाओं द्वारा कहते हैं। प्रथम ही सर्व ज्ञानावरणादि समुदाय रूप सामान्य कर्म के नाम स्थापना द्रव्य भाव का कथन करते हैं। यानी बस कर्म एक, अभी भेदों पर नहीं लगा रहे। कर्म इन जनरल जिसको हम कहेंगे, कर्म सामान्य जिसमें भेद किए बिना जब हम कहेंगे हमारा कर्म है, कर्म बांधा है, कर्म को छोड़ा है। हाँ
पहले लोगों से पूछोगे नाम स्थापना द्रव्य भाव का अर्थ समझे है कि नहीं, वो नहीं समझेंगे तो आगे कर्म पर क्या लगाएंगे।
अच्छा ये निक्षेप हमने कितने देखे जयबेन, कौन कौन से? बहुत अच्छा, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप किसको कहना तेज? अपनी इच्छा अनुसार किसी का नाम रखना, उसमें वो गुण हो ये कोई जरूरत नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप कहेंगे आप? हाँ, अन्य किसी वस्तु को वहाँ मान लेना, अपनी कल्पना कर लेना, हाँ उसको वैसा कहना, वो क्या होगा? स्थापना। उसके कौन से दो भेद हैं? हाँ तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना से क्या समझते हैं? हाँ जैसे जिस वस्तु को स्थापित करना है उस जैसा आकार हम बनाते हैं, किसमें काष्ठ है, चित्र है, जो कोई अन्य पाषाण की वस्तु है, तो उसमें उसका जैसा आकार बनाना उसको क्या कहेंगे? तदाकार। कोई भी अन्य आकार बना लें और उसमें हमने उसको कह दिया कि ये अमुक चीज है, तो ये अतदाकार स्थापना।
ये लंदन में जब तो पंच कल्याण हुआ था अभी लेटली, दो साल पहले, दो तीन साल पहले, तो वहाँ हाथी कहाँ से लावे, तो उन्होंने वो ऐसा लकड़ी का ऐसा ऐसा कुछ बना के,
हाँ फाइबर का बनाया था,
फाइबर का बनाया था, और उसके ऊपर हिंदू को बढ़ा के हाथ
में वो फाइबर का, यहाँ काष्ठादि का लिखा है ना, वहाँ फाइबर का बना तदाकार। ये हो गया नाम और स्थापना। द्रव्य निक्षेप से क्या समझेंगे अरविंद भाई?
भविष्य में जो क्रिया आने वाली है,
यानी द्रव्य वही का वही है, उसके भूत या भविष्य की पर्याय के द्वारा उस द्रव्य को पहचानना, वो क्या है? द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप में लक्ष्मीबेन, हाँ, जिस पर्याय रूप से परिणमित हो, हाँ, उस रूप से उसको कहना करना, उसके साथ वो व्यवहार चलाना, वो है उसका भाव निक्षेप। ये हमने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप देखे हैं। अब कर्मों पर उसको लगाएंगे, कर्मों पर, इन्हें अलग अलग भेदों पर लगाना अभी अपना विषय नहीं। अभी पहले कर्म इन जनरल उस पर हम कहेंगे, सामान्य कर्म, भेद किए बिना वाला कर्म। अब 52 नंबर की गाथा पढ़ेंगे हम, 87 पृष्ठ पर। नामठवणादवियं भावोत्ति च उविहं हवे कम्मं पयडी पावं कम्मं मलन्ति सन्नाहुणामलम्। नामस्थापना द्रव्यं भाव इति चतुर्विधं भवेत् कर्म प्रकृतिः पापं कर्म मलम् इति संज्ञा हि नाममलम्। ये जो सामान्य कर्म है वो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार का है। यानी उसमें हम क्या कहेंगे, नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। वो भाव कर्म वाला भाव कर्म नहीं समझना, भाव निक्षेप वाला भाव कर्म। यानी कर्म के ऊपर नाम, यानी कर्म नाम रख दिया, बच्चे का नाम कर्म रख सकते कि नहीं रख सकते? कुछ भी रख सकते, अभी मेरा कर्म है।
आगे आगे है।
अच्छा, मोहनी नाम। मोहनी नाम रखना है। वैसे मोहन तो नाम, मोहन नाम तो रखते। हाँ देखो,
मलम रखना है।
वहाँ यानी कर्म के ऊपर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव के भेद से ये कर्म ही चार प्रकार का कहेंगे हम। प्रकृति या पाप या कर्म या मल, ऐसा जो नाम, वह नाम मलम अर्थात नाम निक्षेप रूप कर्म जानना। यानी किसी का नाम कर्म रखना, वो क्या हुआ? नाम निक्षेप हो गया। ये कर्म के अलग अलग कौन से नाम है? तो उस कर्म को प्रकृति भी कहते हैं, कर्म को क्या कहते हैं? पाप। पुण्य कर्म को भी कहेंगे ना पाप कहेंगे, या कर्म कहेंगे या मल कहेंगे। क्योंकि हम सिद्ध भगवान का वर्णन करते हैं तो तीन प्रकार के मल से रहित हैं। कौन से तीन मल? नहीं, आपको याद है सिद्ध भगवान कौन से तीन मलों से रहित है? अभी यहाँ कर्म को मल कहा, अभी तीन मल यानी तीन कर्म बता ना, हमने इतना क्लू दे दिया। तीन प्रकार के कर्म बताने आपको। हाँ नहीं बोलो। हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है ना, ये तीन प्रकार के मल से रहित है।
दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी।
तो शरीर को मल माना कि नहीं हमने? अरे उसका मल धोने में पूरा दिन चला जाता है। आगे 53 नंबर की गाथा। ये तो अपना नाम की बात हो गई। सरिसा सरिये द्रव्ये मदिना जीवत्थियं कुजं कम्मं तम एदत्ति पदिट्ठा श्रवणातं धावणाकम्मं सदृशा सदृशे द्रव्ये मतिना जीवस्थितं खलु यत्कर्म एतदेतदिति प्रतिष्ठा स्थापना तत्स्थापना कर्म। सदृश अर्थात कर्म समान, असदृश अर्थात कर्म समान न हो ऐसे किसी द्रव्य में, द्रव्य में यानी पदार्थ में, बुद्धि द्वारा ऐसी प्रतिष्ठा यानी स्थापना करना के जीव के समस्त प्रदेशों के समूह में रहने वाला सामान्य कर्म यह पदार्थ है, उसे स्थापना निक्षेप रूप कर्म कहते हैं। जैसे हमने कोई ऐसा आकार, आत्म प्रदेश का आकार, उसकी चित्र बनाए और हमने उसमें डॉट 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 बनाए, हम कहेंगे ये जीव का कर्म है। तो क्या हमने उसमें स्थापना कर दी ना, उन डॉट्स में हमने स्थापना कर दी, हमने कलर कर दिया उसको, हम कहेंगे ये सारा कर्म है, तो ये क्या हो गया, उसको स्थापना हो गया, उसे स्थापना निक्षेप रूप कर्म कहते हैं। अब आगे 54 नंबर की गाथा। दवे कम्मम दुविहम आगमनो आगमन्ति तप्पढ़मम कम्मागम परिजानुग जीवो उवजोग परिहीनो द्रव्ये कर्म द्विविधम आगमनो आगमनिति तत्प्रथमम कर्मागम परिज्ञायक जीव उपयोग परिहीनः। अब ये जो द्रव्य निक्षेप के बहुत सारे भेद है और हम बहुत विस्तार से देखेंगे, नहीं समझे तो फिर दोबारा पूछना भी। तो यहाँ कहते हैं द्रव्य निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार का है, ऊपर लिखा ना द्रव्य कर्म द्विविधम आगम नो आगम इति तत्प्रथम, यानी द्रव्य निक्षेप से कर्मों के दो प्रकार के हैं, आगम द्रव्य कर्म यानी द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप रूप कर्म। कर्म के जो हम उसमें द्रव्य निक्षेप लगा रहे हैं तो उसमें दो भेद कौन से सरला बेन? आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य।
कर्म लगाना,
देखो एक आगम द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म यानी वो आठ कर्म वाला द्रव्य कर्म वो बात नहीं, द्रव्य निक्षेप वाला द्रव्य कर्म, यहाँ निक्षेपों की बात चल रही, बारम्बार ये ख्याल में रखना है। यहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म कहने से जो हम मोह राग द्वेष वाला भाव कर्म और ये आठ कर्मों वाला वो अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप की बात चलेगी। ये बारंबार इसलिए क्योंकि क्या है, कभी कभी क्या है, क्या बताया था वो छूट जाता है, है? तो द्रव्य निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार के, निक्षेप रूप शब्द डाला बीच में, एक कौन सा आगम द्रव्य कर्म और दूसरा भेद नो आगम द्रव्य कर्म यानी द्रव्य निक्षेप रूप कर्म। अभी आगम यानी क्या, जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं जिनागम हम कहते हैं ना, जिनागम यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जो सारा जो रचना है हमारे शास्त्रों की उसको आगम कहते हैं, और आगम को जानने वाला जीव। यहाँ कर्म की बात चलेगी तो कर्म संबंधी आगम को जानने वाला जो जीव है उस जीव को कर्म कहना, परंतु वो जीव यहाँ कैसा जीव लिया है कि अभी उसमें उसका उपयोग नहीं है, वो कर्म का जानकार है परंतु अभी क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, तो उसका उपयोग अभी दूसरे किसी चीज में लगा है, परंतु वो कैसा है, कर्म का आगम जानने वाला जीव। जैसे हम कहेंगे अश्विन भाई वो कर्म की सब थियोरी जानते हैं, कर्म का आगम का अभ्यास किया है और अभी वो क्या है, मोक्ष के साथ बात कर रहे हैं, मोक्ष है ना, हम निक्षेप वाली मोक्ष ग्रैंड डॉटर, हाँ तो क्या कहेंगे, उनका उपयोग अभी उसमें नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कहेंगे उनको, किसको, जीव को। ख्याल में आई बात, जो जीव कर्म के आगम को जानता है, उसका अभ्यास किया है, वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ द्रव्य निक्षेप की बात चल रही है, इसलिए वर्तमान पर्याय उस संबंधी उपयोग रूप ज्ञान में नहीं है, उनके ज्ञान के पर्याय में तो है क्योंकि वो जान रहे हैं, परंतु उपयोग अभी अन्यत्र लगा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। देखो देखो तो यहाँ कर्म का स्वरूप जिस आगम शास्त्र में प्रतिपादन किया, प्रतिपादन ने बताया है, जैसे हम यहाँ कर्मकांड पढ़ रहे हैं, तो कर्म का स्वरूप जिस आगम शास्त्र में प्रतिपादन किया है ऐसे आगम को अर्थ शब्द के संबंध से अथवा ज्ञाता ज्ञेय के संबंध से जानने वाला जीव, अर्थ शब्द ने वहां तो शब्द लिखे है और उसका अर्थ जानने वाला, या ज्ञाता ज्ञेय ने जीव स्वयं ज्ञाता है और उसको ज्ञेय बनाया है आगम ग्रंथों को, तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध से जानने वाला जीव, अपनी भाषा में जिसने कर्म का आगम जान लिया ऐसा जो जीव है, परंतु एक कंडीशन क्या है, जो वर्तमान काल में उस आगम के पदार्थ के अर्थ के अवधारण या चिंतवन आदि में आदि परिणमन रूप उपयोग से रहित हो, यानी वर्तमान में ना उसको पढ़ रहा है, ना उसके बारे में चिंतन चल रहा है, ना उसके कुछ बातें वो याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, रट रहा है,
जान रहा है।
तो अर्थ का उदाहरण यानी जानना, चिंतवन करना यानी मान लेते वो घूम रहा है, रोज प्रकृतियों की बातें याद कर रहा है, तो ऐसा नहीं है उसका उपयोग उसमें, तो उपयोग से रहित हो, अन्यत्र उपयोग युक्त हो, एक वाक्य में बता दिया। यानी वो कर्म के आगम को जानने वाला जीव, उसका उपयोग अभी अन्यत्र लगा है, वह जीव किसको कहा, वह जीव आगम द्रव्य कर्म है। जीव को यहाँ कर्म कहकर पुकार रहे, क्यों, कर्म को, कर्म के आगम को जानने वाला जीव है, उस जीव को यहाँ आगम द्रव्य कर्म कहते, यानी आगम द्रव्य निक्षेप से उस जीव को कर्म कह रहे। ये बात ख्याल में आई सबको? नितिन भाई क्या बताया? यानी कर्म संबंधी आगम, सभी आगम नहीं, उसने समय सार पढ़ा हो तो उसको नहीं कहेंगे आगम द्रव्य कर्म कहेंगे, आगम द्रव्य समय सार कहेंगे, उसकी बात अलग बात है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, कर्म के आगम को जिसने जान लिया है और जिसका उपयोग अभी अन्यत्र है, उस जीव को आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कहेंगे, यानी उसका नाम क्या, आगम द्रव्य कर्म, उस जीव को बताया। आगे अब 55 गाथा दूसरा भेद कौन सा कहा, नो आगम, आगम को नहीं जानने वाला, जो आगम को नहीं जानता ऐसा क्या है तो हम देखेंगे। जानग शरीर भवियम तवदिरिक्तम तु हो द्विजम विदियम सत्थ शरीरम तिविहम तिय काल गयन्ति दो सुगमा न्यायक शरीरम भावि तद्व्यतिरिक्तम तु भवति अद्वितीयम तत्र शरीरम त्रिविधम त्रय कालागतमिति द्वे सुगमे। दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म है, वह तीन प्रकार का। नो आगम यानी जो आगम को नहीं जानता है, ऐसी की बात चल रही है अभी, उसको कहेंगे। तो ये तीन कौन कौन से है, कर्म आगम को नहीं जानने वाले ऐसे क्या क्या चीजें हैं? तो एक उस जीव का शरीर, वो आगम को नहीं जान रहा है, ऐसा जीव के जो भविष्य में जानेगा परंतु अभी नहीं जान रहा है, उसको भी हम नो आगम कहेंगे, परंतु वो भविष्य में जानने वाला है, अभी नहीं जान रहा है। नहीं,
जानने की बात,
भगवान ने तो जाना है कि ये जीव आगे चलकर कर्म का अभ्यास करेगा, जैसे आप लोग अभी कुछ नहीं जान रहे, अभी पूरा कर्मकांड पढ़ने वाले हो, केवली ने जान लिया है, हम भी जानते ना, अभी आप एक साल भर इसका अभ्यास करेंगे, अभी तो नहीं जान रहे कुछ, अभी इसका अभ्यास करेंगे, तो उस जीव को क्या कहेंगे, नो आगम द्रव्य कर्म। तो ऐसी कौन सी, जो नहीं जानते ऐसे क्या है, उस जीव का शरीर। दूसरी बात, वो जीव जो भविष्य में जानने वाला है, केवली तो जानते कि ये भविष्य में जानने वाला है, और तीसरी बात, इनके अलावा अन्य जो चीजें हैं, इनके अलावा अन्य तद व्यतिरिक्त, वो क्या क्या है उसको हम कहें।
ये जो तद व्यतिरिक्त है, वह ऊपर बताए हुए गायक शरीर और भावी, इसके अलावा अन्य
जो
कारण से,
अन्य जो
वह अभ्यास नहीं करेगा उसके बारे
में, नहीं उसकी बात नहीं, तद व्यतिरिक्त जो जीव भी नहीं है और उसका शरीर भी नहीं है।
अच्छा, इन दोनों से व्यतिरिक्त,
ये इन दोनों से व्यतिरिक्त कर्म इटसेल्फ, या अन्य कोई चीजें, अब ये सोफा है, ये तो कुछ जान नहीं रहा है, अन्य पुद्गल जो कुछ वो हम देखे पढ़ेंगे ना आगे, अन्य नहीं जानने वाला, जानने वाले को हमने आगम द्रव्य कर्म कहा। अब ये नहीं जानने वाले में क्या क्या लेना, उसके तीन बताए, एक गायक शरीर, एक भावी, भावी यानी जीव है वो परम जो भविष्य में जानेगा, और तीसरी बात, इन दोनों के अलावा अन्य जो कुछ है, अन्य क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो किसमें मोक्ष, ये जरूरी नहीं कि वो जाके आगे पढ़ेगी, ये जरूर हाँ। जो निश्चित रूप से पढ़ने वाला है जी उसकी बात केवली को मालूम है, अवधि क्या नहीं जानेंगे, जीव तो अभी नहीं जान रहा है पर जो भविष्य में निश्चित रूप से जानने वाला है, जैसे मेडिकल का अभ्यास करने वाला अभी एडमिशन लिए तो निश्चित करने वाला है हाँ अभी और ऐसा भी कह सकते हैं जिसने एडमिशन लिया और बीच में छोड़कर इंजीनियरिंग में चला गया, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है हंस रहे हैं क्योंकि उनके बहन का लड़का चला गया था परंतु केवल ही तो जानते हैं ना कि ये जीव आगे चलकर जानने वाला, हो सकता है आगे के भाव में जानेगा, जरूरी नहीं कि इसी भाव में जानेगा। तो हम यहाँ देखेंगे ये नौ आगम द्रव्य कर्म जो है वो तीन प्रकार का है, कौन सा है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर करते ज्ञायक का शरीर, जो जीव जान रहा है, जीव जान रहा है उसका शरीर तो नहीं जान रहा है, तो उस शरीर को भी हम कहेंगे ना नुअगम कर्म कहेंगे, उसको नुअगम द्रव्य कर्म कहेंगे। तो ये तीन भेद है, कौन से तीन भेद तेजल, हाँ ज्ञायक शरीर, भावी तद व्यतिरिक्त, अभी क्या ये संस्कृत मिश्र है, इनको छोड़कर अन्य जो कुछ है, तद व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त है नहीं, उनको छोड़कर अन्य जो कोई चीजें है वो तद व्यतिरिक्त में आ गए। अब उसमें हम देखेंगे ज्ञायक शरीर, वहां ज्ञायक अर्थात कर्म स्वरूप को जानने वाला जीव, उसका जो शरीर, ये जीव को तो हमने आगम में ले लिया, आगम द्रव्य कर्म में लिया, और यहाँ शरीर लिया, जानने वाले जीव का शरीर तो कुछ नहीं जान रहा है, उस शरीर को ज्ञायक शरीर का, ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक का शरीर, ये षष्ठी तत्पुरुष की बात आई थी ना उसमें, एक शब्द बनाया दोनों का, ज्ञायक शरीर यानी शरीर ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक का शरीर। हाँ तो ज्ञायक अर्थात कर्म स्वरूप को जानने वाला जीव, उसका जो शरीर, उसको ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य कर्म कहते, ये लंबा चौड़ा नाम, पूरा नाम क्या इसका, ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य कर्म। वहां ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का है। अब जो जीव का जो शरीर है, जीव तो वही का वही लेना है जो अभी जो जान रहा है, उपयोग रूप अभी हो नहीं हो उसकी बात नहीं, अभी जानने वाले जीव के शरीर की बात है, वो शरीर कौन सा हो सकता है, वर्तमान का हो सकता है, पिछले भव का हो सकता है, आगामी भव का हो सकता है। ज्ञायक के जो शरीर है, आप अभी कर्म का जो कुछ अभ्यास कर रही हो तो वर्तमान का शरीर, या पहले भव का जो कोई होगा, या भविष्य में जो उदाहरण करेगी उसको भी कह सकते हैं। तो ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का, भूत, वर्तमान और भावी, इस तरह त्रिकालगत है। देखो ऊपर भी एक भावी शब्द आया था और ज्ञायक शरीर में भी भावी शब्द आया, इन दोनों में सरलाबेन क्या डिफरेंस है, नहीं यहाँ शरीर की बात है, वहाँ जीव की बात है, वहाँ भावी जो पहले वाला जो तीन भेद किए ना, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, यहाँ भावी में वो जीव है जो अभी नहीं जान रहा है परंतु भविष्य में जानेगा। ज्ञायक शरीर में भी तीन भेद किए, भूत, वर्तमान, भविष्य वाले, तो भविष्य का जो शरीर होगा उसको यहाँ भावी ज्ञायक शरीर कहा, तो उसको शरीर को कहा, यहाँ शरीर को भावी कहा, वहाँ जीव को भावी कहा,
वो भविष्य में नहीं जानेगा उसको भावी कहा,
नहीं जानेगा, नहीं जाने, नहीं नहीं ज्ञायक शरीर तो कभी भी नहीं जानेगा, ज्ञायक का
शरीर और भावी,
ज्ञायक शरीर में जो तीसरा भेद है ना
उसकी बात नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। पहले जो हमने नौ अगम द्रव्य तीन प्रकार के देखे, ज्ञायक हाँ। शरीर, भावी और तद्वे,
हाँ, यह भावी यानी जीव, तो जो भविष्य में जानने वाला जीव है, वो
भविष्य में जानेगा,
भविष्य में जानेगा वो जीव लिया, उसको क्या कहेंगे, भावी नौ अगम द्रव्य कर्म। और यहाँ ये जो भावी वाला जो डिफरेंस है, भेद है, भावी ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य कर्म, अभी थोड़ा अटपटा लगेगा आपको लंबे लंबे चौड़े नाम सुनकर, नहीं समझे, फिर हम रिपीट करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, और समझ में आवे ऐसी बात है, ऐसी कोई नहीं है। तो अभी तक हमने कितने द्रव्य निक्षेप के कितने भेद देखे सुशीला जी? बहुत अच्छा, मूल भेद दो किए, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म। आप बताना आगम द्रव्य कर्म किसको कहा? हाँ, यानी जो कर्म आगम को जानने वाला जीव उसमें उपयोग से रहित है, उस जीव को आगम द्रव्य कर्म कह दिया। प्रेरणा वे नो आगम द्रव्य कर्म किसको कहना? हाँ, ये नहीं जानने वाले को। अब नहीं जानने वाले की जो नो आगम के तीन भेद बताना आप। हाँ, गायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। यहाँ भावी से क्या मतलब है? हाँ, जो जीव अभी नहीं जान रहा है, क्योंकि नहीं जानने वाले की बात है ना, नो आगम यानी नहीं जानने वाला, परंतु वो भविष्य में जानेगा, इसलिए भावी कहा। ज्ञायक शरीर का अर्थ क्या है जेपी सर? ज्ञायक का शरीर, ज्ञायक का शरीर, नहीं से भाई ख्याल में आती? जानने वाले जीव के शरीर को ज्ञायक शरीर का। और तीसरा भेद कौन सा? तद व्यतिरिक्त, यानी इनको छोड़कर, शरीर भी नहीं और जीव भी नहीं और भी कुछ है ना, अभी कर्म वगैरह अन्य जो कुछ चीजें उसमें देखेंगे, जब उसका नंबर आएगा तब देखेंगे। अभी ज्ञायक शरीर के तीन भेद बताने आपको नैन्सी भाई, ज्ञायक शरीर के तीन भेद। बहुत अच्छा, भूत का, अभी जो वर्तमान में जीव जान रहा है उस जीव का पूर्व शरीर, भूतकाल का शरीर यानी पूर्व पर्याय का, पहले भव का, वर्तमान का और भविष्यकालीन जो भव होगा उसका शरीर, ये तीनों ही शरीरों को ज्ञायक शरीर कहेंगे। यहाँ तक बात ख्याल में आई? आगे देखो, ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का है, भूत, वर्तमान, भावी, इस तरह त्रिकालगत है, चौथी लाइन। वहाँ जिस शरीर सहित जीव कर्म स्वरूप को जानने वाला है वह वर्तमान शरीर, यानी अभी इसी वर्तमान शरीर के साथ वो कर्म को जान रहा है, उस वर्तमान शरीर को यह वर्तमान ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म कहा। इसके पहले जिस शरीर को छोड़कर आया है वह भूत शरीर, भूत का शरीर नहीं, अभी भूत तो हर जगह
भूत का शरीर,
यानी जो छोड़कर
भूतकाल का,
हाँ भूतकाल का शरीर, भूत शरीर तथा आगामी, आगामी ने आगामी भव में जो शरीर धारण करेगा वह भावी शरीर, उन सब को यहाँ ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म कह दिया। वहाँ वर्तमान शरीर और भावी शरीर ये दोनों सुगम है, सुगम है ने समझना है ना, ये वर्तमान का शरीर या आगामी भव में जो शरीर धारण करेगा वो भावी शरीर। अब जो भूतकाल में जो छोड़कर आया है उसके फिर और तीन भेद करेंगे क्योंकि छोड़कर
भूत लग गया
क्योंकि ये छोड़कर आया है, तो मरण किस प्रकार से किया था उसने वो बात बताएंगे। अभी देखो, वर्तमान शरीर को तो धारण कर ही रहा है उसको तो वर्तमान शरीर कहेंगे, भावी शरीर आगामी काल में धारण करेगा ही। अब जो भूत शरीर छोड़कर आया है तो किस किस प्रकार से शरीर का त्यजन होता है, त्यजन होता है ना, मर जाता है, त्याग होता है, इस अपेक्षा से भूत शरीर के विशेष कहते हैं, भेद कहते हैं, यानी भूत शरीर के भी तीन भेद कहेंगे यहाँ पर। अब पहले हम पढ़ेंगे गाथा, फिर उसको देखेंगे, 56 नंबर की गाथा। भूदम सुचुदम चैदम चदन्ति तेदा चुदम सपाकेन परिदम कदली घात परिचागे नूनयम होदी भूतम सुचुतम चावितम त्यक्तमिति त्रेधा चुतम स्वपाकेन पतितं कदली घात परित्यागे नोनम भवति। ज्ञायक का जो भूत शरीर है वह तीन प्रकार का, एक है चुत, एक है चावित और एक है त्यक्त। आज बहुत कसरत है ना एक किसके भेद है तेजल? भूत शरीर, भूत ज्ञायक शरीर। वहाँ अन्य कारण बिना अपने उदय ही से शरीर छूट जाए, नष्ट हो, उसे च्युत कहते हैं। आयु पूर्ण हो गई और शरीर छूट गया, वो च्युत यानी छूट गया, च्युत होना यानी छूट जाना। इसलिए यह शरीर कदलीघात अथवा संन्यास इनसे ऊना अर्थात रहित जानना। कदलीघात यानी विष भक्षण से, किसी एक्सीडेंट से, जो हम कहते हैं कि आयु अधिक बांध कर आया है, किसी कारणवश उसका कदलीघात होकर वो जल्दी मरण हो जाता है, तो ऐसा मरण नहीं हुआ है जिसको हम कहते हैं नेचुरल डेथ, यानी उसकी पूरी आयु भोग के उसका देह छूट गई है, उसको च्युत कहेंगे। या उनने संन्यास भी धारण नहीं किया, संन्यास समझते हैं, संलेखना, संसारों उससे रहित है, वहां कदलीघात का लक्षण कहते हैं। क्योंकि हमें अभी उत्सुकता है कि कदलीघात क्या होता है, तो उसको तो उस अन्य नाम देगी ना, चावित कहेंगे, त्यक्त कहेंगे, उसके नाम अलग अलग है। 57 नंबर, विसवे अनरत्तक्षय भयसत्थ ग्रहण संकिले से हिम पुष्टा साहाराणम निरोह दोछिज्जदे आउ विषवेदना रक्त क्षय भयशस्त्र घात संक्लेशै उच्छ्वासाहारयोः निरोधतः छिद्यते आयु। बहुत आसान है श्लोक वैसे समझने में। देखो नीचे पढ़ते हैं, विष तीव्र वेदना, रक्त का क्षय यानी तीव्र रक्तस्राव, हिमरेज, रक्त बह जाना, खून बह जाना अधिक प्रमाण में, तीव्र भय, तीव्र भय से भी तत्काल मरण हो सकता है, हम देखे ना हार्ट अटैक आए कुछ देखकर, गुस्से से ऐसा भी देखते हैं। शस्त्र से घात, अभी बंदूक की गोली हो या तलवार की बात हो या अन्य जो कुछ है, क्रोधादि रूप तीव्र संक्लेश, अत्यंत संक्लेश परिणाम से भी जीव का मरण हो सकता है, श्वासोच्छ्वास का रुकना, अभी अन्य किसी ने रोक दिया जो कुछ हो तो रुकना, या बीमारी से आहार का रुकना, यानी वो तो स्टार्वेशन हम कहेंगे, आहार ही नहीं मिला उसको, आदि कारणों से यदि आयु का छेद यानी नाश हो जाए उसे कदलीघात कहते हैं। ये कदलीघात की एक बात है, कर्म भूमि के मनुष्य और तिरियंचों में ही ऐसा कदलीघात हो सकता है, नारकी में नहीं होता, नहीं तो अच्छा है ना, नरक नारकी तो वहां रहना नहीं चाहता है, कदलीघात से मरण हो जाए तो अच्छा है। नारकियों में या देवों में या भोग भूमि में कदलीघात से मरण नहीं होता, उसको कहते हैं असंख्यात वर्षा की आयुष वालों के कदलीघात से मरण नहीं होता। कहाँ होता है? कर्म भूमि के मनुष्य और तीयंचों में। हो सकता है कि करोड़ पूर्व की आयु लेके आया है और पर्याप्ति पूरी हुई और अंतर्मूर्त में कदलीघात से मरण हो जाए, ऐसा बन सकता है। कौन से? हाँ हाँ, ये कारण, ये तो बाह्य कारण, वैसे उस जीव के परिणामों में ऐसी आयु बांध दी थी कि ऐसे कदलीघात से मरने वाले, यानी हम क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा देख तो उसका कारण उसका निमित्त भी निश्चित है, क्योंकि केवली केवली ने तो जाना है ना, उसका ऐसा ही मरण होगा। तो ये कदलीघात की बात और कल करेंगे।
कर्म भूमि के मनुष्य तीरंत ने पहले आयु बांधी हो तो उसका कदलीघात भी नहीं होता।
हाँ, ये बात निश्चित है कि जिसने आगामी पर्याय की आयु बांध ली है, परभव की आयु बांध ली है, उसका भी आबाधा निश्चित हो गया, आबाधा काल, क्योंकि मान लेते 81 वर्ष की आयु वर्तमान की है और उसके 2/3 बीत गई, 1/3 बाकी है, 27 साल बाकी, उसने आयु का बंद कर लिया, तो अभी आगामी आयु की आबाधा कितनी हो गई? 27 साल, वो अभी फिक्स है, वो कम नहीं हो सकती है, यानी उसका नेक्स्ट आयु का उदय कब होगा, ये 27 साल उसने पूरे जी लिए तब हो जाएगा, यानी जिसने आयु का बंद किया है उसके कदलीघात से मरण नहीं होगा, ये नियम है। हाँ, क्या कहा? जिसने आगामी आयु का बंद किया है उसके कदलीघात से मरण नहीं होगा। अब उसमें और भी लगाओ, जो चरम शरीर है उसको तो मरण ही नहीं होगा, कदलीघात का क्या होगा? बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकनो सदा देत हो। दोषी सर।